ओम शांति। तो हमारी ये प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है। हमने लास्ट में देखा था कि बाबा रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं, तो उसमें बताया था धरने के आधार पर, वहां की धरने कैसी है, वहां की आत्माएं कैसी हैं। अभी आज भी एक छोटा सा प्रश्न है, उस पर हम विस्तार करेंगे फिर आपस में मिलकर सभी। प्रश्न है, किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? उत्तर है इसका, रूप और बसंत, दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट निकालेगी। तो डबल रिजल्ट के लिए दोनों सेवाएं एक साथ, कौन कौन सी? रूप और बसंत की। कल भी बाबा ने विदेशियों के साथ मुलाकात की थी कि बीज पावरफुल होगा तो फल भी श्रेष्ठ निकलता है, और उसके लिए बाबा ने उनको एक अटेंशन खिंचवाया था कि स्व सेवा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के लिए बैलेंस चाहिए दोनों चीज का। तो हम देखेंगे बैलेंस जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। अगर एक तरफ ही हम झुक जाते हैं तो दूसरी तरफ से बहुत सारी नुकसान होने की संभावना रहती है और इसका रिजल्ट भी इतना परिपक्व नहीं होता है। तो रूप और बसंत अर्थात दोनों का बैलेंस चाहिए जीवन में। जब भी हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, केवल सेवा की स्मृति है और ज्ञान योग उसमें नहीं है दोनों, अर्थात रूप और बसंत की स्थिति नहीं है, तो फिर सेवा जो है टेम्परेरी होती है। उसमें हमें खुशी मिलेगी, परिणाम अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमको बाद में फीके पड़ जाते हैं। तो जब हम सेवा में जाते हैं तो उसमें ज्ञान और योग की चैतन्य मूर्ति बनकर अगर हम सेवा करते हैं तो सामने वाले को भी टच होता है, उसके भी दिल में तीर लगता है, उसको भी थोड़ी अनुभूति होती है। तो हम देखेंगे कुछ एक बातों को हमको निरंतर जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे हम संबंध संपर्क में आते हैं या सेवा के फील्ड में जाते हैं या कर्म क्षेत्र पर, लौकिक है अलौकिक है कहां भी हम जाते हैं, क्योंकि 24 आवर हम ऑन गॉडली सर्विस है। तो देखेंगे कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस कैसे रखें। तो सबसे पहले तो हमको खुद का जांच करनी है कि जो हमारा जो टाइम है, सबसे पहले टाइम की जांच करनी है कि कौन सा ऐसा हमारा टाइम चला जा रहा है, हमारे हाथ से निकला जा रहा है, जो टाइम हम अनावश्यक बातों में दे रहे हैं। जिस टाइम को हम सफल कर सकते हैं और उस टाइम में हम अपनी उन्नति को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, उस टाइम में हम अपने ज्ञानियों को बढ़ा सकते हैं, आत्मा को सर्वशक्तियों से संपन्न कर सकते हैं। तो पहले हमको खुद का एक प्लान बनाना है, टाइम प्लान, ताकि हम बाबा की अपेक्षाओं के अनुसार, बाबा की आशा के अनुसार सेवा के क्षेत्र में रूप और बसंत बनकर बैलेंस रखकर सेवा करें और डबल रिजल्ट हमारे हाथ में आए बाबा की आशा के अनुरूप। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम का प्लान बनाना है। 24 घंटे में हमारा टाइम कहाँ बेस्ट जा रहा है वो हमको पहले रोकना है। लीकेज तो नहीं हो रही है, उस लीकेज को अगर हमने नहीं रोका तो एक एक सेकंड करके, बूंद बूंद करके, जैसे तालाब बन जाता है उसी तरह से एक एक सेकंड करके बहुत सारा हमारा समय नष्ट हो जाता है और फिर बाद में हमारे हाथ में क्या आता है, पछतावा, पश्चाताप। अब उस टाइम को अगर हमने जो बचत किया है, अब उसको हमको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, उसका सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि योग की अवस्था को परिपक्व करने के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के अगर हम योग करते हैं तो वो ज्ञान में, वो योग में ताकत नहीं आती है, इसलिए पहले से अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करना है। तो अध्ययन को बढ़ाना है हमको, सबसे पहले हमको जो भी हमको मुरलियां हैं या क्लासेस हैं या अनेक प्रकार की मैगजीन निकलती हैं, बहुत सारा लिटरेचर है, तो हमको अध्ययन को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जितना हमारा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, बुद्धि उतनी प्रखर होती जाएगी, बहुत सारे ब्लॉकेज खुलते जाएंगे, शक्तिशाली होती जाएगी। और उसमें हम अपने को बिजी रखेंगे ध्यान में, तो बहुत सारी बातों से हम सेफ हो जाते हैं। वो एक तो व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे, फिर नए नए शब्दों की रचना, नए नए टचिंग हमको मिलेगी, और आत्मा में जो ज्ञान है वो शक्ति का काम करेगा धीरे धीरे, वो हमारा समय सफल होगा, और एक सब कुल मिलाकर एक आंतरिक खुशी जन्म लेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे टाइम को सफल किया है, और बाबा की भी हेल्प मिलेगी। जैसे आज ही बाबा ने कहा आज के मुरली में, अपनी खामियां निकालनी है तो क्या करो, सच्चे दिल से बाप को बताओ, तो बाबा भी टचिंग देंगे, करंट देंगे। तो जब भी हम अध्ययन करते हैं तो बाबा की हमको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने उसकी श्रीमत का पालन किया है, उसकी श्रीमत के अनुसार हमने अपना टाइम प्लान बनाकर उसकी पढ़ाई को आत्मसात करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले अध्ययन को बढ़ाना है, जितना हमारा अध्ययन बढ़ता जाएगा उतने हम अनेक प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सेवा के क्षेत्र में भी नई नई टचिंग, हमको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, वो भी नई नई टचिंग हमको प्राप्त होगी। जैसे कल की मुरली में सेवा की अनेक प्रकार की युक्तियां थी, अगर हम उस मुरली का अध्ययन ही नहीं करें, उसको हम देखें ही नहीं, तो वो युक्तियां हाथ में आएंगी क्या, वो निकल जाती हैं, खिसक जाती हैं, क्यों एक दो पर पढ़ने से कुछ भी नहीं हाथ में आता है। तो लंबे समय का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, परिसंवाद करते हैं, तो धीरे धीरे वो बातें हाथ में आती हैं, नहीं तो इधर से आई उधर से चली जाती है, फिर अगली मुरली आ जाती है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले हमको अध्ययन बढ़ाना है, और साथ साथ में हम देखेंगे योग के भी अभ्यास करने हैं। अध्ययन के साथ साथ में हमको अशरीरी बनने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि अशरीरी बनने का अभ्यास ये हमारा अंतिम पेपर ही है, एक सेकंड में देह से डिटैच अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव। तो हमको व्यक्तिगत रूप अपने पर ही नजर रखकर इस चीज को बढ़ाते जाना है। दूसरी बात है, सेवा में जाते हैं तो हमको बोलना भी पड़ता है, तो जो हमारे बोलने की कला है उसमें भी निखार लाना है। तो बोलने की कला में निखार कैसे आएगा, हाँ मीठा बोलो, धीरे बोलो, नहीं बोलो तो कैसे निखार आएगा उसमें, सुमान के बोलो। और तो हमको सबके लेक्चर सुनने चाहिए, है ना, देखना है कोई भी वक्ता होता है तो उसके बोलने में कौन कौन से वो शब्दों का परहेज रखता है, ताकि सामने वाले को दिल से लग जाता है। वो एक होता है हम सामने वाले को आप कहकर करते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसमें संपूर्ण और आप ऐसे ही है, तो उसमें हमको हम शब्द यूज करें हम, और सम्मानजनक शब्दों, क्योंकि जब आप हम बोलते हैं मतलब सामने वाले को आप है, तो ये सम्मानजनक शब्द ही, लेकिन हम अपने आप को डिटैच कर रहे हैं उससे, सामने वाले को हम थोड़ा नीचे की दृष्टि देख रहे हैं जैसे। हाँ कुछ कुछ एक होते हैं जिनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है तो उनका आप भी अच्छा लगता है, जैसे बाबा बोलते हैं आप बच्चों के करना चाहिए, तो बाबा तो संपूर्ण ही है ना, ऐसे दादियां जब आप शब्द बोलती हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत ऊंची है। हाँ कभी कभी बोलती हैं, कभी कभी नहीं बोलती हैं, उनके शब्दों में भी हमें सीखने की बात है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे दो तीन साल पहले हमने देखा था आंगन में रतमन दादी जी खड़े थे, और महाराष्ट्र के भाई थे, तो वहां तुम शब्द तो नेचुरल है उनको, उनके लिए, तो दादी जी को कहते तुम उधर आई थी ना अभी, तो अब हमको तो बड़ा उत्साह लग रहा था वो सम्मानजनक शब्द दिया उस भाषा क्षेत्रीय भाषा में, उस क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन अगर 10 लोग दूसरी स्टेट के या कोई भी कहीं का भी खड़ा है तो खराब लगता है कि इतनी बड़ी दादी हो रही है तुम शब्द, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो हम जब हम बड़ों का लेक्चर सुनते हैं, एक सार्वजनिक सभा होती है जो, हाँ दादियों को उनकी भाषा, दादियों को तो सब अच्छा ही लगता है तो हद से हमको बाहर निकलना पड़ता है, उस भाषा में उस बोल में क्षेत्रता ना हो, उस बोल में कोई ऐसे शब्द ना हो जो सामने वाले के दिल के चुभे, दिल को चुभे, या वो हतोत्साहित हो जाए, उसका उमंग उत्साह कम हो जाए। तो हमको अपने बोल में निखार लाने के लिए लेक्चर सुनने हैं सबके, जैसे बाबा की वाणी सुनते हैं, बड़ों के लेक्चर सुनते हैं, तो क्यों वो दिल को भेद जाते हैं, उनकी अगर वो ऐसी वैसी बात भी है वो खराब नहीं लगती। जैसे कल ही बाबा ने बताया कि सत्यता भी है, निर्माणता भी है, नम्रता भी है और रहम दिल भी है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं है। तो बाबा उतनी स्टेज से उसमें स्थित होकर हमको सुनाते हैं वो, ताकि उनको दिल को वो लग जाता है, हाँ ये तो है हमारे में और नहीं होना चाहिए जो। तो हमको अपनी बोलने की कला में भी निखार है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो बोलना जो है ना बहुत अहमियत रखता है। सामने वाला देखता है इनके शब्दों में जो अपना नशा तो नहीं, अपना अभिमान तो नहीं है। अगर हम अपने को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें कि हम देखो कैसे पतित हो गए थे, अब भगवान हमको पावन बनाने के लिए आया हुआ है, कैसे पत्थर बुद्धि हो गए थे, अब पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हुआ है। तो बाबा ने कहा उसमें अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर दो। तो दूसरा हम देखेंगे कि बोलने की कला भी हमको निखार लाना है, ताकि रूप बसंत बनकर हम बाबा के जो डबल रिजल्ट, बाबा ने कहा कि सेवा के क्षेत्र में डबल रिजल्ट निकलेगी कब, जब हम रूप और बसंत दोनों का बैलेंस होगा। तो दूसरी बात हो गई बोलने की कला में निखार आना है, और इसी से हम योग का अभ्यास जोड़ेंगे तो साथ साथ हमको बीज रूप अवस्था का भी अनुभव करना है, क्योंकि उस अवस्था में जो परमधाम की अवस्था है, बीज रूप अवस्था है, जो बाप के सारे संस्कार हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमारे में वो आती जाए, तो उस अवस्था का भी साथ साथ हमको अनुभव करते जाना है। क्योंकि योग हम लंबे समय तक कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो सभी का ऐसा नहीं है कि सवेरे शाम तो दो दो घंटे को बैठ के योग कर ले। कईयों के प्रश्न आते हैं सेंटरों में, क्योंकि सेवा में बहुत बिजी रहना पड़ता है तो कैसे योग करें। तो योग तो वास्तव में हमारा जीवन योगी है, तो जो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है टुकड़ों टुकड़ों में, किस्तों किस्तों में, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, तो हम छोटे छोटे अगर अभ्यास करते जाते हैं तो भी हमारी दिन प्रतिदिन जो योग की अवस्था वो परिपक्व मैच्योर होती जाएगी। तो बोलने की कला और साथ में बीज रूप अवस्था का अनुभव ये भी बढ़ाते जाना है दिन प्रतिदिन। तीसरा है चिंतन को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम चिंतन नहीं करते हैं तो ये ज्ञान भी चिंता लेकर आता है साथ में, क्योंकि इस ज्ञान को हम अपने में नहीं लाते हैं और बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, इतनी अवस्था, इतनी लंबी मंजिल है और बहुत सारी बातें बीच में आती हैं। अगर उस ज्ञान का हम चिंतन नहीं करते तो वो हमारे कर्मेंद्रियों में नहीं समाता है, वो बहिं का ही रुक जाता है, वो बहते पानी की तरह नहीं होता, अर्थात वो एक खड़ा पानी, और खड़ा पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो उस ज्ञान को रोकना है और उस ज्ञान का चिंतन करना है, ताकि उसका मक्खन निकले। तो ऐसा उस दिन जो संडे की मुरली में के इस ज्ञान का मक्खन निकालना है, हाँ जितना मंथन करेंगे उतना मक्खन निकलेगा, और मक्खन खाएंगे तो क्या होगा, ताकतवर होगी, और ताकतवर होगी तो क्या होगा, माया आएगी तो उसको ध्वस्त कर सकेंगे। तो हम है जी माया आएगी नहीं, वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम शक्तिशाली बन जाएंगे, वो माया फिर महारथी के बनकर आएगी। बाबा कहते माया बड़ों के पास ही पहले आएगी, छोटे वोटे तो ऐसे धापे से गिरा देगी, हाँ छोटे के वो तो पहले बड़े को देखेगी, क्योंकि पहले वो कहाँ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में अटैक करती है, अगर वही दोस्तों के जहाँ से सारा सप्लाई होता है पूरे विश्व को, वहीं काट दिया जाए कनेक्शन तो क्या होगा। तो बड़े से बड़े रुस्तम से होकर, रुस्तम होकर लड़ती है वो। तो हमको चिंतन बढ़ाना है, जितना हम चिंतन बढ़ाते जाएंगे सूक्ष्म रूप से जो माया के रूप है अनेक प्रकार के, उनको हम परख सकेंगे तो बुद्धि प्रखर बनती जाएगी, और चिंतन बढ़ाने से नई नई बातें भी हमको टचिंग होती रहेंगी। और साथ साथ में योग का अभ्यास कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करना है, बाबा से हम कंबाइंड है, कंबाइंड होकर रहेंगे तो चिंतन भी हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये होगी तीसरी बात, बाप के साथ कंबाइंड। हाँ अनेक प्रकार के संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, या मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो गई हूं, या मैं आत्मा परमात्मा के सन्मुख बैठी हूं उससे बातचीत कर रही हूं, कंबाइंड अर्थात जब जहां दो ही व्यक्ति हैं, तीसरे का कोई वहां, तीसरे की वहां महसूसता ही नहीं है, उसका वहां कोई अनुभव ही नहीं है, केवल हम दो ही हैं। जैसे प्रेमी होते क्या होते हैं, उनको एक दूसरे को, तीसरे को दिखता ही नहीं है उसमें, तो उसमें हम भी भगवान के प्रेमी बन के रहे। तो कंबाइंड अर्थात हमारे और उसके बीच तीसरा कोई नहीं है, तो हम अपने दिल की लेन देन कर सकते हैं। बताए ना बाबा ने, सर्जन को बीमारी बताएंगे तो बाबा युक्तियां बताएंगे, करंट देंगे। तो कंबाइंड रूप की स्थिति से हम अलग अलग तरीके से उसमें भले संबंधों का भी अनुभव कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं, तो उससे शक्तियां ले सकते हैं, अनेक प्रकार के योग के प्रयोग कर सकते हैं। तो कंबाइंड रूप का भी अनुभव करना है। चौथी बात है सेवा में डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, डर निकाल देना है। अगर हम डरते हैं सामने वाले को देखते हैं कि तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके आगे हम कैसे बोलेंगे, तो वो सेवा भी फलीभूत नहीं होती है। तो वहां हमें अपना डर निकालना है, और निकलेगा बताया ना अध्ययन करने से। अध्ययन करने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई किसकी है, स्वयं भगवान की पढ़ाई है, तो उसमें अथॉरिटी आएगी अंदर में। बाबा ने बताया ना अथॉरिटी कल के मुरले में, तो अथॉरिटी बढ़ेगी तो हमारा डर धीरे धीरे निकलता जाएगा, और डर निकलेगा तो जो भी हम बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा दिल से। जैसे कई बार इस ब्राह्मण जीवन में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कैसे निडर होकर बोलते हैं, भाषण स्टेज पर बोल देते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमको अपने अंदर का डर भी निकालना है, और डर निकलेगा ये हम बातें निरंतर जो करते रहेंगे तो, और डर के साथ साथ योग से हम जोड़ेंगे उसको, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्रामा में अनेक प्रकार के सीन आते हैं तो हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं, तो उस ड्रामा को भी अगर हम साक्षी अवस्था में स्थित होकर देखें, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा एक्यूरेट है, ड्रामा भी एक्यूरेट है, ये ड्रामा स्वयं भगवान को भी पसंद है, सब ठीक ठाक चल रहा है इसमें, ऑल इज वेल, बिल्कुल ओके, एकदम एक्यूरेट है, इसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। मैं सोचूं ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए, तो माना हम भगवान की जो शिक्षा हमको वो दे रहे हैं, तो हम उससे जैसे उससे वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें हम उंगली उठा रहे हैं कि ड्रामा ठीक नहीं है, तो भगवान के ऊपर भी हम जैसे एक सूक्ष्म रूप से संशय पैदा हो जाता है। तो इस ड्रामा को भी हमको निरंतर साक्षी होकर देखना है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, जो कल की मुरली में था, अनुभव बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में जाते जब हम अपना अनुभव उसमें ऐड कर देते हैं, जो हमने इस ज्ञान से प्राप्त किया है, जो बाबा की मदद का अनुभव किया है, उस अनुभव को अगर बताते हैं तो सामने वाले को दिल को लगता है। अगर हम केवल शब्दों तक ही सीमित रहते हैं तो दिल तक नहीं रहता, ऊपर ऊपर ही रहता है, और दिल से सच्चे मन से सामने वाले को भी अपनी फैमिली का समझ के पूरी आत्मीयता के साथ अगर हम उसको अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं तो उनको थोड़ा लगता है दिल को, हाँ बिल्कुल ही सत्य है। क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के रास्ते, बाबा ने बताया ना, भिन्न भिन्न धर्म है, मान्यता है, रीति रस्म है, लेकिन केवल एक यही ज्ञान है, यही नया ज्ञान है, ये स्पष्ट करो बाबा ने कहा। तो हम अपना अगर अनुभव ऐड कर देते हैं कि हमने भी पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में कितना अपने में परिवर्तन किया, वो अगर हम अनुभव शेयर करें तो उस अनुभव के साथ भी उनको परिवर्तन करने की मन में एक नया बीज अंकुरित होगा, और एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ बाबा के साथ का एक्सपीरियंस करना है, जो कंबाइंड का ही बता दिया है। जैसे निरंतर अगर हम सेवा क्षेत्र के जा रहे हैं तो अपने साथ अनुभव करें, बाबा मेरे साथ चल रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, जो दादा विश्व रतन जी कहते हैं कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा एक तीसरे कैमरे की तरह है, वो उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर है, वो मुझे नजर उस निहाल कर रहा है, मैं उसकी छत्रछाया के नीचे चल रहा हूं, वो मेरा सुरक्षा कवच है, तो ये साथ साथ उसके साथ का अनुभव करना है। तो कितनी बात होगी, पांचवी एक्सपीरियंस, ज्ञान सुनाते समय भी और योग में भी ये एक्सपीरियंस, ज्ञान योग और योग दोनों इकट्ठा, ताकि रूप और बसंत दोनों साथ साथ ये हमारी स्थिति चलती रहे, ताकि हम दृष्टि से भी सेवा होती रही और मुख से भी सेवा होती रही, उसके उसका परिणाम डबल रिजल्ट निकलेगी। फिर नेक्स्ट है फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। जब हम अलौकिक जीवन में हमने कदम रख दिया तो हाँ, वैसे हम कर्म क्षेत्र घर में घर गृहस्थ में रहते हैं तो वहां तो हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब हम सेवा में निकलते हैं तो वहां फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए, हमारे घर में ऐसे हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, तो वहां हमने बाहर एक लौकिक फैमिली की सारी जो लेन देन है वहां अगर हम रख देते हैं तो उस वातावरण का प्रभाव जो है ना वो रहता नहीं है, अलौकिकता खत्म हो जाती है, तो वहां भी हमको फैमिलियरिटी नहीं। इसलिए बाबा कहते ना, कई बार साकार मुरली में आते हैं कि बच्चे कई बार फैमिलियरिटी में ज्यादा आ जाते हैं कि हमारे तो वहां सब्जी ऐसे बनती है, यहां ऐसे नहीं है, वहां ऐसे है, वहां ऐसे है, कंपैरिजन चालू होता है, क्रिटिसाइज चालू होता है, बहुत सारी बातें फिर वहां जन्म लेती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो हमको देखना है कि सेवा के क्षेत्र में फैमिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, लगाव बढ़ जाता है फिर, वो तो नया संबंध पैदा हो जाता है, हमारी बहन वहां ऐसे है तो एक नई बहन मिल गई, ये बहन अच्छी लग रही है, वो हमारी लौकिक वाली ठीक नहीं है, तो कंपैरिजन चालू हो जाता है। तो फैमिलिटी लौकिकता में भी, अलौकिकता में भी फिर लौकिकता प्रवेश हो जाती है धीरे धीरे, यहाँ का भोजन वहां का भोजन। तो ये सारी चीजें होती है, फेमिलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, उसको पूरा अलौकिकता को अलौकिकता में ही रहने देना है। अगर लौकिकता प्रवेश करा, हमने कर दिया वहां, लौकिकता को प्रवेश करने दिया, तो भी हमारा सूक्ष्म रूप से पाप पड़ता जाएगा। तो हम हाँ, बहुत सारे एक आदतें भी होती हैं कि जो चीज हमको लेनी नहीं है उसका भी पूछ लेंगे, ये जैकेट कितने के लिए है, लेनी नहीं है अपने को, तो कितने के लिए है, ये जूते कहाँ से आए हैं, ये चश्मा कहाँ से लिए है, ये साड़ी कैसी है, ये चुन्नी कैसी ली है, अच्छी सी लग रही है। तो ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती जो हमको लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हम चर्चा करते रहते, तो ये भी फैमिलिटी की बातें, केवल कीमत की चर्चा करते रहते। हाँ, ये इतने का है, इतने का है, ये पहले वाला मॉडल है, नया मॉडल है, अभी इसकी ऑफर चल रही है। हाँ जी, महंगाई, हाँ महंगाई की चर्चा, अभी इस पर ऑफर निकली है, ये पहले इतने का था, अभी इतने का है। अच्छा, मैंने इतने का लिया था तो मैं अभी इतने का दे दूंगा, फिर मैं नया मॉडल ले लूंगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा समय को खा जाती हैं, कीड़े की तरह, दीमक की तरह, धीरे धीरे हम खोखला होते रहते हैं अंदर से। तो ये जो फैमिलिटी की ये बातें हैं, बाहत की बातें हैं, ये हमारी अलौकिकता को नष्ट कर देती हैं। फिर हाँ, चीजों का भी धीरे धीरे लेन देन बढ़ता जाता है, और ऐसा बढ़ता जाता है फिर तो बात ही मत पूछो, फिर तो बात ही मत पूछो, उसमें मन सब कुछ ही आ जाता है। तो हाँ, बढ़िया। कई बार ऐसे भी होता है, कईयों को देखा है कि बुकिंग कराते हैं कंपनियों में और बाद में पत्थर ही निकलता उसमें, घटिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाद में पत्थर ही आता उसमें, कुछ आता ही नहीं। तो कितने संकल्प चलते हैं वो चीज। तो खैर, ये फैमिलिटी की बातें, संसार की बातों को हमको इस अलौकिक संसार में प्रवेश करने से रोकना है, ताकि हमारे यहाँ की अलौकिकता बनी रहे। और ये बाबा ने कहा, हाँ जी, पॉलिटिक्स की चर्चा है, मौसम की चर्चा है, जानवरों की चर्चा है, जो चर्चाएं हमारी जीवन को क्या बना रही हैं, खोखला करती जा रही हैं। तो हैं चर्चित, चर्चित चेहरे, राजनीतिक, हाँ राजनीति उठापटक तो चल ही रही है संसार में। तो हम संसार में तो सुनना है, तो लेकिन वहां तक ही सीमित रखना है। परिवार में आते तो हमको उन चीजों को यहां नहीं लाना है। जैसे किसी किसी की सेवा ऐसी है जो उससे जुड़े हुए हैं संसार में, अपने जो भाई बहन है कोई, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े, तो उनको रखनी पड़ेगी सारी नॉलेज। तो लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ाए। तो क्रिकेट की चर्चा है, वो सारी चीजें हैं, हैं फिल्मों की चर्चा है, खिलाड़ियों की चर्चा है। तो इन चर्चाओं से हमको बाहर, हम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे बड़े राजनीतिक तो हम लोग हैं। माया को, माया और हमारी आपस में, वो विपक्ष में बैठे, हम पक्ष में बैठे हुए हैं, वो कुर्सी छीनने के चक्कर में है। तो ऐसा ना कि वो हमारी कुर्सी छीन के ले जाए, वो भी अपने मत पेश कर देगी, मेरी इतनी मत है, तुम्हारे पास क्या है। तो हमको अगर लौकिक संसार में रहते तो वहां भी उसको अलौकिकता में परिवर्तन करना है। अगर संसार में कुर्सी छीनने की बात चल रही है, तो हमको अपनी कुर्सी कैसे प्राप्त करनी है, अर्थात अपनी ऊंच मंजिल कैसे प्राप्त करनी है, तो ये चीज देखनी है। और इसके साथ योग का अभ्यास, हमको फरिश्तापन का अभ्यास करना है। उस फैमिली में हम रहते हैं तो फरिश्ते की तरह रहना है। फरिश्ते हल्के होते हैं, अटैचमेंट नहीं होती है, वो आया और गया केवल संदेश देने के लिए, थोड़े समय के लिए अवतरित हुआ है। तो उस समय हमको फरिश्ते की, फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। नेक्स्ट है, ये जीवन हमको गिफ्ट में मिला है, सौगात में मिला है, और भगवान ने ये सौगात में दिया है। तो इस सौगात को हमको कैसे यूज करना है, स्वयं भगवान केवल संगम युग पर हमको, ये छोटा सा लीप युग है, छोटा सा पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है, जिसमें हमें न केवल अपना ही कल्याण करना है, बल्कि पूरे जगत का कल्याण करने के लिए उसने हमको चुना है। कितनी सारी उम्मीदें उसने हमारे ऊपर रखी हैं, अपेक्षाएं रखी हैं। तो इस गिफ्ट को हमको उसी तरीके से यूज करना है। ये जीवन किसके लिए है, दूसरों का कल्याण करने के लिए है, तपस्या के लिए है, सेवा के लिए है, ज्ञान युग के लिए है, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए है, दूसरों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए है। तो इस गिफ्ट का उसी तरीके से अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भी हम इस सेवा के क्षेत्र में डबल रिजल्ट निकलेगी। और इसी के साथ योग का अभ्यास के, मैं ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो सूर्य कैसे हमेशा प्रकाश में रहता है, सूर्य क्या क्या देता है, उस दिन बताया था, सूर्य क्या क्या चीजें देता है, एनर्जी देता है, खुशी देता है, और उमंग उत्साह लाता है कि नया सवेरा शुरू होता है, सबको रोशनी देता है, व्यय खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जैकेट गर्मी देता है, गर्मी वो लड़ाई झगड़े वाली नहीं, गर्मी हैं जी एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य आते हैं तो कैसे पंछी सवेरे सवेरे चहचहाते हैं, नई आशा है, नई किरण, नया सवेरा, नया उमंग उत्साह, नए संकल्प, नई सोच, नया विचार, नया विश्वास। तो ये सारी चीज नवीनता होती है जीवन में, अंधकार समाप्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। रात को जानवर होते हैं, दिन में जानवर से डर नहीं इतना रात को रहता है, फ्रेशनेस होती है एकदम, है जी, थकान खत्म हो जाती है, विटामिन मिलते हैं उससे, कपड़े सूख जाते हैं उसे। ये सही बात बोली आपने, क्योंकि सार तो यही है, ये देह रूपी कपड़ा भी सूख जाएगा। तो वो सूर्य, क्योंकि यहां माउंट आबू में जो बरसात का मौसम होता है तो तीन तीन महीने की हालत होती है, लोग बड़े तंग हो जाते बेचारे। बाहर के लोग आते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, क्या मौसम है, और यहां रहने वाले बड़े तंग हो जाते हैं। बोले स्वर्ग है तो यही है, और जो यहां रहते हैं वो क्या सोचते हैं। कपड़े नहीं सूखते हैं तो सूर्य कपड़े भी सुखा देता है, ठीक है। तो ये हमको गिफ्ट मिला है, और साथ में ज्ञान सूर्य मैं आत्मा हूं, तो उसी तरीके से हमको ये भी साथ में योग का अभ्यास करना है। नेक्स्ट है होली अंश, इसमें दोनों अभ्यास समाये हुए हैं, होली सोल होली अंश, अर्थात दूसरे की विशेषताओं को देखना है, गुण ग्रहण करने हैं। बताया ना बाबा ने हंस क्या करते हैं, दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। और बाबा भी हम सबको बुराइयां थोड़े देखते हैं, हम सबको कितने अच्छे अच्छे सम्मान देते हैं, हमारे अनादि आदि संस्कारों को कैसे हमारे सामने रखते हैं। तो हमें दूसरों में भी गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है, गुण फूंकने हैं, उस दिन था ना गुण फूंकने हैं तुमको दूसरों में। तो ये है मैं होली हंस, और इसी में साथ में ये योग का अभ्यास, होली हंस अर्थात दूसरों के गुण ग्रहण करने वाले और दूसरों को गुणवान बनाने वाले। नेक्स्ट है अपनी इंस्पेक्शन करनी है, और रात को बताया था कि दो बाबा ने हमको सम्मान दिए बहुत बड़े बड़े, कौन से, आईएएस और आईपीएस। आईएएस माना आई एम सोल, और आईपीएस माना आई एम पीसफुल सोल, आई एम प्योर सोल। तो ये भी ज्ञान और योग दोनों के अभ्यास हो गए साथ साथ में, और साथ में इंस्पेक्शन स्वयं की जांच करनी है साथ साथ में। बाबा कहते हैं ना बीच बीच में चेक और चेंज करते रहो, तो इंस्पेक्शन करनी है। नेक्स्ट है जिम्मेवारी समझनी है कि स्वयं भगवान ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, और इस जिम्मेवारी को भी जॉयफुल तरीके से निभाना है। इसी के साथ योग का अभ्यास आनंद से खुशी खुशी से, है ना, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने हमको इतनी जिम्मेवारी दी कि तुम बैठे बैठे सेवा कर सकते हो, भाग दौड़ नहीं कर सकते हो, बीमार भी है कोई पैसा नहीं धन से सेवा नहीं कर सकता है, धन नहीं दे सकता है, मन से तो कर सकता ना, अगर कोई बीमारी है तो भी मनसा सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा कब होगी, जब हमारे मन के अंदर उतनी शक्ति होगी, शुद्ध संकल्पों का भंडार अंदर में मौजूद होगा, तो स्वतः वो वाइब्रेशन, क्योंकि 24 घंटे हमारे में से वाइब्रेशन तो निकलते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है नॉर्मल है कैसे भी है, निकलते रहते हैं 24 आवर। तो जो भी हमने सोच के रखा हुआ है वो स्वतः सेवा होती जा रही है, जैसे सूरज सोचता नहीं है कि मेरे से रोशनी निकले या नहीं निकले, वो तो नेचुरल जा रही है ना, ऐसे हम सब आत्माओं के अंदर जो भी हम रिकॉर्डेड है वो स्वतः 24 आवर मनसा सेवा चली रही है। लेकिन जिसमें हम प्रॉपर तरीके से बैठ के करते हैं तो उस समय सेवा का प्रकाश ज्यादा फैलता है, और जब हम विस्मृति में होते हैं सेवा तो तब भी होती रहती है, क्योंकि अगर हम बोल नहीं रहे तो सामने वाले कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, वो क्या हमारे से ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे क्या जीवन से क्या उठा रहे हैं, उनको क्या शिक्षा मिल रही है हमारे जीवन से, आचरण उनको हमारा कैसा लग रहा है। जैसे परसों स्लोगन था ना, वाणी के साथ साथ अपने चलन और चेहरे से सेवा करो तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो अपनी इंस्पेक्शन करते रहना, जांच करते रहना साथ साथ में। और तो ये सब बताया जिम्मेवारी और जॉयफुल। नेक्स्ट है कर्मयोगी जीवन, अगर हमको रूप बसंत दोनों बनना है तो कर्म करते करते योग हमारा चलता रहे, खाली कर्म नहीं है कर्म योगी जीवन है, उस कर्म में योग समा जाए धीरे धीरे। नेक्स्ट है ला और लव का बैलेंस, लव और ला, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में जाते हैं कहीं कहीं हमको ऐसा अपेक्षा है कि हमको स्नेह मिले किसी से तो हम सेवा करें, कोई हमारा नाम ले तो हम सेवा करें, नहीं लव और ला दोनों होने चाहिए। हमने देखा कई बार हम भी जहां रहते थे तो वहां भी हमारे टीचर में दोनों लव और लव दोनों को बैलेंस थे, तो पहले वो ला को पहले रखते थे, लव तो बाद की बात है। तो हमने पहली बारी जब मुरली सुनी थी अव्यक्त वाणी, तो उसमें था ये कि तुम बच्चों को कभी भी लव का लव की अपेक्षा नहीं रखनी है। अभी तुम दूसरों को लव देने वाले, उसने देने वाले, लेने वाले नहीं हो। तो वहीं से हमारा हमारी हमने अपने मन में सोच लिया कि किसी का स्नेह हमको चाहिए नहीं। और चाहिए क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान अभी स्नेह दे रहा है, तो किसी के देदारी किसने की क्या आवश्यकता है। तो जितना हम लव और ला का बैलेंस रखते हैं तो भी हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है, तो हमारे जीवन में शक्ति आती रहती है, तो दूसरों के प्रभाव में जुकाम में नहीं आएंगे। तो लव और ला का भी बैलेंस चाहिए, और साथ साथ में इसके साथ योग के जुड़ा अभ्यास कि मैं लाइट हाउस हूं। लाइट हाउस का क्या कर्तव्य होता है? दूसरों को रास्ता दिखाने वाला था है। तो मैं खुद को अगर रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो दूसरों को कैसे दिखाऊंगा? तो खुद को ही अपने आप ही स्वयं को लाइट हाउस जागृत करके रखना है कि मैं लाइट हाउस हूं, ना केवल स्वयं के जीवन को प्रकाशित कर रहा हूं बल्कि अनेक आत्मा को प्रकाशित करने के निमित्त स्वयं भगवान ने मुझे बनाया हुआ है। तो निरंतर ये स्मृति रखनी है, सतत जागरूकता रखनी है कि मैं लाइट हाउस हूं। नेक्स्ट है, सेवा में जाते हैं तो हमको मिठास बहुत होनी चाहिए, बताया उन्होंने कि मधुरता, क्योंकि हमारे बोल में जितनी मिठास होगी तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ कुछ तो है। तो क्योंकि उस जैसे जमीन दुकान में अगर कोई जाता है तो जो सेल्समैन होते हैं तो बहुत सारे उनके पास नियम होते हैं कस्टमर को अपना बनाने के लिए। बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, भले वो चीज 10 रुपए की होगी लेकिन 100 रुपए की बेच देंगे वो उसको, इतना मीठा मीठा बोल बोल के। सेल्समैन वही होशियार होते हैं जो गंजे को भी कंघी बेच देते हैं, ऐसे कहा जाता है, भले बाल सिल के ऊपर नहीं है लेकिन फिर भी कंघी बेच देते हैं उसको। तो इतना मीठा मीठा बोले कि सामने वाला पिघल जाए। तो ये जो हमारा बाबा का ज्ञान है ये बहुत बड़ा सौदा है, ऊंचा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है, लेकिन इसको प्यार से देना, क्योंकि सामने वाले को खरीदने के पास पैसे नहीं है, अर्थात उतनी उसके ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। तो बड़ा मिठाई बाबा ने कहा ना ज्ञान की मिठाई, उस दिन था ना मुरली में, साकार मुरली में, तो हमको इस तरीके से मीठा मीठा बन के देना है कि वहीं का वहीं ढेर हो जाए, उस दुकान इस दुकान से बाहर जाने ना पाए वो, है ना। हमको याद है हम सेल्समैन ही तो करते थे हम लोग, तो जो भी कस्टमर आते थे तो जब पैसे लेन देन की बात आती थी तो हम उनको कहते थे पैसे किसने मांगे आपसे, पैसे तो हम घर जाके ले लेंगे आपसे, यहां को थोड़ी लेंगे आप। तो ऐसे ऐसे करके तो कस्टमर ढेर हो जाते थे, अर्थात बातों में फंस जाते थे। और सच में वो अगर हम अंदर में उनका कल्याण है, ठगने का नहीं, उनके प्रति भी हमारा निस्वार्थ सेवा है, उनके प्रति भी हमारी भावनाएं अच्छी हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली, और भावने का हट्टी तो एक ही है, जाना कहां सबको आना तो यही है, तो क्यों ना हम पहले से ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले कि वो सभी ग्राहक पहले से ही आना शुरू हो जाए, नहीं तो लास्ट में भीड़ पड़ जाएगी। इसलिए पहले से अपनी वाणी में मधुरता रखनी है, और इसके साथ साथ योग का अभ्यास लाइट हाउस के साथ साथ ये माइट हाउस हूं, शक्ति स्वरूप हूं, है ना, डरने वाले नहीं है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो शक्तिशाली बनकर हम, बाबा ने बताया ना अपने पावर प्लान में पावर भरो, कल के संडे की मुरली में था कि प्लान में पावर भरनी है, तो बीज भी शक्तिशाली श्रेष्ठ निकलेगा। नेक्स्ट है ओ, ओ से ओम शांति, ओ से ओम शांति माना बाबा ने कुछ दिन पहले बोला, ओम शांति में सारा ज्ञान आ जाता है, इसमें योग भी आता है ज्ञान भी आता है। तो जब हम ओम शांति बोलते हैं तो उसमें सारे सृष्टि चक्र को घुमा लेना है, ओ माना बाबा और किंगडम, हाँ ओ वा ओके ओके, बाबा ने कहा दो ही शब्दों में अपना चार्ट लिखो, ओके ओ माना बाबा और के माना किंगडम। तो ओम शांति जब भी बोलते हैं तो उसमें हमको अर्थ स्वरूप में टिकना है, क्योंकि ये बोलते 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 एक नेचुरल सा हो गया ओम शांति ओम शांति, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस में बोला जा रहा है इसलिए सामने वाले को कुछ भी फील नहीं होता है। तो अगर हम जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं कम से कम थोड़ा उस अर्थ स्वरूप में टिककर करते हैं तो सामने वाले को थोड़ी बहुत अनुभूति हो कम से कम। तो ये ज्ञान और योग इसमें दोनों आगे। नेक्स्ट है प्योरिटी, जो हमारे इस जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता, इसको दिन प्रतिदिन हमको बढ़ाते जाना है। और ये कैसे बढ़ेगी, जो बताया सबसे पहले टाइम प्लान बनाते हैं तो हमारा नेगेटिव चीजों में हमारा टाइम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले से हम इतने जन्मों का सिर पर बोझा है, और अगर हम फिर भी इस समय अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने अपने साथ ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम अपने अपनी प्योरिटी को बढ़ाते जाना साथ साथ में, और इसी से सोमान जुड़ा मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो उसका अभ्यास करना है लंबे समय के बाद, तो धीरे धीरे कर्म इंद्रियां शांत होने लगती हैं, नहीं तो इतनी। इसलिए बाबा ने कह इन आंखें आज की मूल्य में शायद आंखों को सिविलाइज, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनको सिविलाइज बनाओ। तो धीरे धीरे नहीं तो ये सारी कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देने वाली, और ये किसको बताएंगे? तो हमको अपने आप को पता है कि हमारे कर्म इंद्रियां हमारे वश में कितनी है, आंखें कहां तक कंट्रोल में है, हमारा मुख कहां तक कंट्रोल में है। चलो ये आंखें हैं लेकिन अंदर की आंखें क्या क्या देख रही हैं। तो ये हमको अपने ऊपर ही खबर रखनी है, पहरेदारी देनी है, स्वयं पर पूरा सुरक्षा रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है कि अपनी पवित्रता को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चनों से परे रहना है। क्या क्यों नहीं, बाबा ने उस दिन बताया ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं पुरुषार्थी होते हैं उनको क्या क्यों नहीं जाते, प्रश्न में नहीं जाते। जितना कम से कम ज्ञान समझ में उसको तो अच्छी तरह पकड़ ले, जो नहीं समझ में रहे धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या क्यों से परे होकर ये ऐसा क्यों कर रहा है, फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी ड्रामा से रिलेटेड प्रश्न है। अर्थात हम क्यों क्या से परे होकर हमको प्रसन्न चित्त रह के सेवा करनी है। योग से जुड़ी हुई बात है कि मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्मा हूं, तो क्या क्यों से परे। नेक्स्ट है रियल, आर से रेस्पेक्ट देनी है सबको, क्योंकि हर मनुष्य क्या चाहता है जीवन में, रेस्पेक्ट चाहता है, चाहे छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे भी हैं, बड़े भी है, कोई भी है, सबको रेस्पेक्ट देनी है। ना हम खुद स्वयं को रेस्पेक्ट देनी है, दूसरों को रेस्पेक्ट देनी है, स्वयं में सम्मान में रहना, दूसरों को सम्मान में रखना है। तो ये है रेस्पेक्ट, अर्थात इसमें ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गया। क्योंकि सेवा में जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा नहीं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं और इनको तो ज्ञान का पता नहीं है, लेकिन हो सकता है सामने वाले भी पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ के आए हुए हैं, उनकी पिछले जन्मों कितनी साधना है, या अभी वो जुड़े हुए हैं कई कई संस्थाओं से। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा ना उस दिन कि संसार में लौकिक में भी देखे कई कई फैमिली कितनी अच्छी होती हैं, वो तो उनसे भी सीखने को मिलता है, उनसे भी उनको सीखना है, चाहे छोटा बच्चा कोई भी है, तो सीखने की कला होनी चाहिए साथ में। तो हमको रेस्पेक्ट देना, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। नेक्स्ट है यस स्वीटनेस, मधुरता तो हो गया, सोमान इसके साथ, हाँ सोमान, सोमान के साथ और था, हाँ सोमान तो योग में आएगा, ज्ञान में आए। सोडा वाटर नहीं होना है ना, सोडा वाटर था तो मुरली सुनते हैं बाहर गए तो सोडा वाटर, तो मुरली खिसकनी नहीं चाहिए, उसको बार बार नजर रखनी है उसके ऊपर, रोना प्रूफ बनना है, किसी ने कुछ बोला तो सोडा वाटर हो गए तो रो पड़े, नहीं सोडा वाटर नहीं होना है। तो हमको क्या बनना है फिर, कौन सा वाटर बनना है, मिनरल वाटर, लून पानी नहीं, खीर खंड बनना है, माना सोडा वाटर लून पानी नहीं होना, उनका अर्थ कहने का ही। तो हाँ जी बिंदु गुलाब जल बनना है, तो सोडा वाटर नहीं होना है, अपने सम्मान में रहना है। नेक्स्ट है ट्रस्टी होकर रहना है। जब भी हम सेवा में जाते हैं तो वहां अगर हमारा ट्रस्टी नहीं है, अपने अंदर अभिमान है, मैंपन है, मैं सुना रहा हूं ज्ञान, तो वहां भी निमित्त भाव अगर गायब है तो सामने वाले ज्ञान सुन के गायब हो जाएगा, आएगा नहीं वो। तो वहां हमको ट्रस्टीपन का भाव भी रखना है और साथ साथ में न्यारापन की प्रैक्टिस करनी है उसके साथ में, निमित्त और न्यारापन। नेक्स्ट है उमंग उत्साह में रहना है और उपराम, ज्ञान सुनाते समय उमंग उत्साह से उनको ज्ञान सुना है और उपराम भी रहना है। ऐसा नहीं कि इतना उमंग उत्साह में आ जाए कि सामने वाला भी उमंग समय तो आ गया और हम उसके भाव में बह गए, उसके साथ ही हो लिए। तो उमंग उत्साह में भी रहना है और उपराम भी रहना है। नेक्स्ट है हमेशा हमको याद रखना है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारी हुई पड़ी है, हमारा बैकबोन कौन है, स्वयं साथी भगवान है, इसलिए विजय निश्चित है, कदम कदम में सफलता हमारे परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आ रही है। और नेक्स्ट है और डब्ल्यू कहां गया, खा गए बीच में, बात करना है अपने आप को, देखना है बेट, हाँ किसी की वेट नहीं, किसी के लिए रुकना नहीं है। घरों में अधिकतर होता है किसी के लिए रुकना पड़ता है, अगर हमको कहीं जाना और हमारी बस निकलने वाली हो तो हम रुकेंगे थोड़ा नहीं उसकी, इसलिए इस ज्ञान मार्ग में भी किसी लिए रुकना नहीं है, अकेले आया अकेले जाना है, वेट नहीं करनी किसी की। और नेक्स्ट है सेवाओं के अनुभव, एक्स मना जो पूर्व में सेवाओं के हमको अनुभव अनेक प्रकार के, चाहे अपने दूसरों को, उनको स्मृति में रखना बार बार। और नेक्स्ट है यश, वाई से यश, यश मिले कीर्ति मिले इससे मुक्त रहना, इससे प्रेरणा है, हमको स्वयं भगवान हमारी कितनी कीर्ति कर रहा है, हमारा कितना कीर्तन कर रहा है, वो तो हमको योग से उसको रिलेट कर देना है। नेक्स्ट है लास्ट में जेड, तो ये वैसे ऊपर हो गया जील एंड एंथुसिज्म, उमंग सा से सेवा हमको करनी है। तो ये कितनी बातें थी, 26 बातें थी, योग और ज्ञान की दोनों रिलेटेड हो गया, तो इससे क्या होगा? हाँ, इससे क्या बनेंगे? रूप और प्रशांत। तो रूप और प्रशांत दो भाई थे, तो याद तो नहीं हमको अच्छी तरह से, फिर भी जितना याद है, रूप बसंत अर्थात एक जो देखने में अच्छा नहीं था उसको क्या कहा जाता था? बसंत। लेकिन उसके मुख से मोती बहुत झरते थे, कहा जाता उससे जो मुख से बोल निकलते थे वो मोती के समान थे, दूसरे पिघल जाते थे, और जो रूप था वो सुंदर था, वो उसको देख के लोग प्रभावित होते थे। तो हमको तो डबल रिजल्ट, बाबा ने कहा अगर सेवा में डबल रिजल्ट चाहिए तो रूप और बसंत दोनों मिलकर सेवा करनी है, अर्थात दृष्टि और मुख से। दृष्टि अर्थात आत्मिक दृष्टि, योग युक्त दृष्टि, योग में अवस्था हो, योग में वातावरण, जहां भी हम सेवा करने जाते हैं पहले से वहां के वातावरण को योग के किले में बांध के रख देना है, तो हम डबल सेवा हमको मिल सकेगी, डबल सेवा का डबल रिजल्ट मिल सकेगा। ओम शांति।
Me.